आस्तिक, मैं चाहता हूं कि तुम अरुणिमा को तलाक दे दो, पुष्कर जी गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोले। जैसे ही आस्तिक ने यह सुना, एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो गुस्से में अपने पिता को देखते हुए कहता है, वो नॉनसेंस, डैड क्या बकवास कर रहे हैं आप। पुष्कर जी के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि उन्हें अरुणिमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पूर्णिमा को देखते हुए बोले, अपना पागलपन बंद करो, वास्तव में मुझे एहसास हो गया है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। आस्तिक ने पुष्कर जी को हैरानी भरी निगाहों से देखा और कहा, सच में डैड, आपको लगता है कि मुझे इस बात की परवाह है कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं? पहले तो आपने मेरा इस्तेमाल किया, इतने सालों तक मुझे माफिया में रहने के लिए मजबूर किया, उसके बाद मुझे मजबूर किया कि मैं शादी करूं, और वो भी आपकी पसंद की लड़की से। आखिरकार जब ये सब कुछ हो गया है तो अब आपको अपनी ही पसंद नापसंद आ रही है। ये पहली बार था जब आस्तिक अपने पिता से ऊंची आवाज में बात कर रहा था, लेकिन पुष्कर जी को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी। वो गुस्से में बोले, हाँ, वो लड़की जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, वो एक लापरवाह इंसान है, और उसी की लापरवाही की वजह से आज उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। उसने हमारे परिवार के वारिस को पैदा होने से पहले ही मार डाला है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अब कभी माँ नहीं बन सकती। जो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती, उसके साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मुझे अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए, इसलिए तुम इस लड़की को छोड़ दो और मैं किसी दूसरी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस लड़की ने पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आस्तिक का चेहरा जैसे इतना सफ़ेद हो गया था कि उसके शरीर में खून ही नहीं रह गया था, और अरुणिमा की तो जैसे दुनिया ही पलट गई थी। अभी अभी उसने अपने बच्चे को खोने का दर्द महसूस किया था, और उसके बाद आस्तिक से उसका इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब पुष्कर जी ने ये बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके हाथ पैर एकदम से सुन हो गए और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। घबराते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी और एकदम से बेड पर बैठ गई, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। उसने अपना चेहरा उठाकर आस्तिक को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल पूरी तरह टूटा हुआ, लेकिन आस्तिक गुस्से में अपने पिता को देख रहा था। अरुणिमा ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बुदबुदाते हुए अपने आप से कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से माँ बन जाऊंगी, ये नहीं हो सकता है, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया है, वो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, मैं फिर से माँ बन पाऊंगी, अपने बच्चों को फिर से एक बार महसूस कर पाऊंगी। सीरियसली डैड, आपको इस सिचुएशन में भी उस स्टूपिड समाज की परवाह है? आस्तिक के शब्द लड़खड़ा रहे थे, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, उसके पिता उसके सामने ऐसा कैसे कह सकते थे। लेकिन पुष्कर जी सीरियस थे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, होश में आओ, तुम्हें लगता है मैं अपने खानदान के वारिस के बारे में मजाक करूंगा? मैं इतने लंबे समय से एक वारिस की उम्मीद कर रहा था, और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अरुणिमा से करवाई थी ताकि वो मुझे एक वारिस दे सके, लेकिन अब वो उसके लायक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे अभी अभी बताया कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा सौतेला भाई बाप नहीं बन सकता है और तुम्हारी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। अच्छा, तो आप इसीलिए मेरा इस्तेमाल फिर से करना चाहते हैं? ये तो बहुत बुरा हो गया आपके लिए, क्योंकि अब मैं इस्तेमाल होने वाली चीज रहा नहीं ना डैड, आस्तिक ने तंज कसते हुए कहा। तो पुष्कर जी गुस्से में बोले, बकवास बंद करो, होश में रहकर बात करो, तुम अपने पिता के सामने हो। आस्तिक का गुस्सा भी आज उसकी हद से बाहर था, उसने भी तो अपना बच्चा खोया था, पहली बार पिता बनने का दर्द उसने भी महसूस किया था, अरुणिमा पर लगे बेवफाई के इल्जाम को उसने भी सहा था। कोई भी इस सदमे से अभी निकल नहीं पाया था कि उसके पिता ने उसके सामने एक और फरमान सुना दिया। कुछ कदम आगे बढ़ता है और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सगे बाप हैं। आस्तिक, जबान संभाल कर बात करो। पुष्कर जी गुस्से में चिल्लाए, लेकिन आस्तिक का चेहरा नहीं बदला। उसकी निगाहें कठोर थीं और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि इस हालत में भी आस्तिक और अरुणिमा को मॉरल सपोर्ट देने की बजाय ये कह रहे हैं कि वो अरुणिमा से अलग हो जाए। उसने गुस्से में पुष्कर जी को देखते हुए कहा, मेरी बीवी इनफर्टाइल नहीं है, और आइंदा ये शब्द अपने मुंह से निकलने की गुस्ताखी मत कीजिएगा डैड, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप और मेरा खून का रिश्ता है, और मैं अरुणिमा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे कोई बच्चा ना दे। मैं बिना बच्चों के सिर्फ उसके साथ सारी जिंदगी बिता दूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा, पुष्कर जी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहते हैं। होश में आओ आस्तिक, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। अगर तुमने अरुणिमा और मेरे फैसले में से अरुणिमा को चुना तो तुम सब कुछ खो दोगे। अगर तुम इस बांझ औरत के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हर चीज से अपने कदम पीछे लेने होंगे, यहां तक कि माफिया की कुर्सी से भी, जिसके लिए तुमने इतने सालों तक मेहनत की है, इतने सालों तक इंतजार किया है। आस्तिक, तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा सिर्फ इस औरत के लिए। अरुणिमा की उंगलियां बेडशीट पर कस गई थीं, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ऐसा नहीं था कि उसे इन दोनों बाप बेटे की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन जो इस वक्त वो महसूस कर रही थी वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आस्तिक उसके साथ रहना चाहता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो,
ये बात अरुणिमा को एक उम्मीद दे रही थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि आस्तिक ने सालों तक माफिया में शामिल होने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। ऐसे में अरुणिमा के लिए अपने इतने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देखा। लेकिन आस्तिक के शब्दों ने अरुणिमा को पूरी तरह से चौंका दिया था और वो एकदम से हक्का बक्का रह गई थी। ऑफर अच्छा है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे अरुणिमा और पावर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अरुणिमा को ही चुनूंगा। मेरे लिए अरुणिमा ही मेरी पूरी दुनिया है, भले ही वो कैसी भी हो, मैं उसे हर रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। आस्तिक के इन शब्दों ने न सिर्फ अरुणिमा को बल्कि पुष्कर जी को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम भूल रहे हो कि तुमने इस जगह को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम बचपन से ही माफिया का लीडर बनने की रेस में शामिल थे और तुम उसके खिलाफ अतवारिस हो, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ एक लड़की के लिए ये सब छोड़ रहे हो। अपनी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का इंतजार, तुम इन सबको सिर्फ उस पांच लड़की के लिए छोड़ रहे हो? जबान संभाल कर बात कीजिए डैड। आप जिसके लिए ये पांच शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। और अगर एक बार और आपने अरुणिमा के लिए ऐसा कुछ कहा तो मैं हम दोनों के रिश्ते की मर्यादा को भूल जाऊंगा। आस्तिक ने एकदम गुस्से में अपने पिता के सामने बगावत करते हुए कहा। तो पुष्कर जी भी अपने असली रूप में आ गए थे और उन्होंने आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे वही बेटे हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, लेकिन एक लड़की की मोहब्बत में तुम इस कदर पागल हो गए कि अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहे। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और तुम्हारे लिए उसके भी कुछ सपने हैं।
पर अगर तुमने अभी इसी वक्त अपना फैसला नहीं बदला तो सिर्फ तुम्हें ही माफिया से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हारी माँ को भी इस घर से निकाल दिया जाएगा। जो करना है कर सकते हैं आप मिस्टर रायचंद, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए उन सबसे बढ़कर है जिनके झूठे सपने आप लोगों ने मुझे दिखाए थे। आस्तिक ने आखिरकार अपने शब्दों को सटीक तरीके से पुष्कर जी के सामने रख दिया, लेकिन पुष्कर जी एक आखिरी बाजी खेलने के मूड में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, होश में आओ आस्तिक, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसने व्यंग्य से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, वैसे भी मैं उसकी नफ़रत का हकदार हूँ और ये नफ़रत उसकी ज़िंदगी में मैंने ही अपने लिए पैदा की है, इसलिए उसकी मोहब्बत हो या नफ़रत मुझे कबूल है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद आस्तिक पलटकर अरुणिमा को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हैरानी। वो अरुणिमा की आंखों में देखकर जज्बात से कहता है, वो हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम पागल हो गए हो आस्तिक, उस लड़की के लिए तुम अपने पिता से बगावत कर रहे हो। पुष्कर जी ने इतना ही कहा था कि आस्तिक ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, मेरे शब्दों की मर्यादा और आपके लिए इज्जत बस इतनी ही है। इसके आगे आपने कुछ कहा तो शायद मैं वो कर जाऊं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। पुष्कर जी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन याद रखना, अगर मैं इस कमरे से अपने कदम बाहर निकालूं तो इस वक्त तुम्हारा मेरे परिवार से और मेरे काम से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हारी माँ का भी अस्तित्व हमारे परिवार से खत्म हो जाएगा और फिर पुष्कर रायचंद का सिर्फ एक ही बेटा होगा। मेरा दूसरा बेटा आस्तिक रायचंद मेरी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा। दरवाज़ा पीछे है, जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। आस्तिक ने इन शब्दों में पुष्कर जी को अपना फ़ैसला सुना दिया था और अगले ही पल पुष्कर रायचंद गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन उस कमरे में जो बची थी वो थी अरुणिमा की सांसें, जो इस तरह से दौड़ रही थीं कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। उसके सामने इतना कुछ एक साथ हो गया था और एक साथ ही सब कुछ उसके हाथ से निकलता चला गया।